तत्वा सूत्र लेक्चर नंबर 11 ओम नमः चित्रेभ्य ओम नमः चित्रेभ्य ओम नमः चित्रेभ्य ओम शब्दात्मने प्रणामो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयविनानं नमो अध्यायानं नमो रे सर्वसाधूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वित्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे यह आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित जो तत्वार सूत्र है उसके ऊपर के मोक्ष शास्त्र नामक जो टीका लिखी गई है उसके पेज नंबर 32 पर हम आए हैं। यहाँ हिंदी में 21 नंबर का पॉइंट है वीतरागी विज्ञान का निरूपण।
गुजराती पेज 27।
जैन शास्त्रों में अनेकांत रूप यथार्थ जीवादि तत्वों का निरूपण है। क्या कहते हैं, पहले हमको अपने को बताया था कि सप्तभंगी और दो प्रकार के प्रमाण और एक नय, तो यहाँ कह रहे हैं ये नयों के माध्यम से प्रत्येक वस्तु स्वरूप अनंत धर्मात्मक है ये बात सिद्ध होती है। इसलिए कहते हैं जैन शास्त्र जो है उसमें अनेकांत जो है उस अनेकांत रूप यथार्थ जीवादि तत्वों का निरूपण है, यानी जीव आदि जो कोई तत्व बताए हैं वे अनेकांत स्वरूप है, ऐसी बात यहाँ पर बताते हुए कहते कि इसका ही निरूपण जैन शास्त्रों में होता है। तथा सच्चा यानी निश्चय मोक्ष निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग बताया है, इसलिए यदि जीव उसकी पहचान कर ले तो वह मिथ्यादृष्टि न रहे। इसमें वीतराग भाव की पुष्टि का ही प्रयोजन है। राग भाव में किसको किसको शामिल किया है तो कहते पुण्य और पाप भाव, तो कहते राग भाव की पुष्टि का प्रयोजन नहीं है। यानी हमने पहले देखा था कि सच्चे शास्त्र वे ही है कि जिसमें वीतरागता का ही पोषण या पुष्टि का पुष्टि यानी उसको बढ़ाना, तो वीतरागता का ही पोषण होता है और जिसमें राग भाव का पोषण हो है वह तो वितराग विज्ञान नहीं होगा, ये बात बताना चाहिए। इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि राग से पुण्य से धर्म होता है वे जैन शास्त्रों के मर्म को वो जैन शास्त्रों के मर्म को नहीं जानते। यहाँ पर भी ये कोटेशन आधुनिक हिंदी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 224 पर से लिया है। अब आगे बताते हैं मिथ्या दृष्टि के नय, तो मेरा ये प्रश्न है मिथ्या दृष्टि के व्यवहार नय होते हैं क्या निश्चय नय होते हैं? दिव्याबेन आप क्या बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि के नय होते नहीं है क्योंकि वो नया भास है कहो या मिथ्या नय है कहो, जो नए नहीं होते यानी सम्यक नए नहीं होते, वो तो नयात्मक ही बोलता है लेकिन उसको नए कहते हैं और कौन सा नए है इसका भी उसे पता नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य शरीर को अपना मानता है और ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो शरीर है वह मैं हूँ। देखो यहाँ और क्या क्या बातें बता रहे हैं, शरीर को अपना मानना एक पॉइंट हो गया कि मैं मनुष्य हूं और शरीर जो ये एक पॉइंट हो गया और जो शरीर है वह मैं हूं, ये दूसरा पॉइंट, अथवा शरीर मेरा है, इस टाइप की ये जीव की अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी मान्यता ये होती है कि शरीर मेरा है, अपना है और शरीर ही मैं हूं, ऐसा मानता है। यहां कह रहे हैं जीव शरीर का कोई कार्य कर सकता है ऐसा मानने वाला जीव, क्या कहना है कि मैं शरीर का कुछ न कुछ कर सकता हूं ऐसा मानने वाला जीव, आत्मा और अनंत रजकणों को एक रूप मानने के कारण अर्थात अनंत के मिलाप को एक मानने के कारण मिथ्या दृष्टि है और उसका ज्ञान भी यथार्थ में कुने है। हाँ जी, जरा जोर से बोलना।
निश्चय कुने लिखा या खाली कुने लिखा?
इसमें निश्चय कुने
या यथार्थ में लिखा ना भाई?
यथार्थ में कुने।
हाँ, यथार्थ में यानी निश्चय से कुने है, वास्तविकता से सही देखा जाए तो, जो भी आपको अर्थ करना है ऐसी मान्यता पूर्वक। इसलिए मैं बोल रहा था कि सभी को हिंदी पुस्तकें होती तो अच्छा था, बिल्कुल एक नहीं, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में अटकते लोग, क्योंकि मैं तो इसके अनुसार चलूंगा। अब आप ही बोल रहे हैं यथार्थता मैं बोल रहा हूं, वो बस उसमें यह शब्द नहीं है, उसका अर्थ निश्चय का आपने बताया। अब निश्चय का और यथार्थ का अर्थ ही कहीं होता है, सत्यार्थ कहो अभूतार्थ कहो, अभी इतनी बात तो आ गई ना, कितनी बात, ये सब एक एक अर्थवाची शब्द है, कोई बात नहीं। क्या कह रहे, देखो मिथ्या दृष्टि और उसका ज्ञान भी यथार्थ में यानी निश्चय से कुने है, ऐसी मान्यता पूर्वक प्रवर्तना कि मैं मनुष्य, प्रवर्तन यानी बिहेव करना कि मैं मनुष्य हूं, यह उसका यानी मिथ्या दृष्टि का व्यवहार है, इसलिए वह व्यवहार कुने है। वास्तव में तो उस व्यवहार को निश्चय मानता है, जैसे जो शरीर है सो मैं हूं, इस दृष्टांत में शरीर पर है वह जीव के साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही है, तथापि उसको अपना रूप मानना, अपना रूप माना, इसलिए उसने व्यवहार को निश्चय समझा। ये क्यों ऐसा समझ रहा है, उसका यहां एक्सप्लेनेशन दिया है कि जिस क्षेत्र में जीव है उसी क्षेत्र में ये शरीर है, और आगे की बात तो ऐसी है कि शरीर जो है वह पुद्गल है, इसलिए उसको स्पर्श रस गंध वर्ण से जाना जाता है, और आत्मा है सो अरूपी है, वो किसी इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जाता है, और मेजॉरिटीली बहुतांशी जैसा यह जीव चाहता है वैसा ये शरीर भी कार्य करता है। देखो, मैंने इच्छा की कि मैं हाथ उठाऊं, मैंने इच्छा की कि मैं बोलूं, मैंने इच्छा की मुझे भूख लगी तो मैंने इच्छा की मैं खाना खाऊं, और वो शरीर का भी ऐसा ही परिणमन होता है, तो ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मानने को चालू करता है, और मैं शरीर का सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी आजकल के फिल्म आर्टिस्ट है ना, कोई 10-10, 15-15 किलो बढ़ाता है और कोई 10-10, 15-15 किलो घटाता है, तो जो पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है वो पुद्गल के कारण से हो रहा है, जीव की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है, लेकिन जब जब होता है तब तब मानता है कि मैंने किया, और जब नहीं होता है क्या मालूम, मैंने इतनी कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, हम ऐसा सोचें कि अगर मनुष्य के हाथ में है शरीर का परिणमन, शरीर का कार्य करना, तो ये बुढ़ापा क्यों आने देता ये? हा? अच्छा भैया, बुढ़ापा नहीं आवे तो कोई वादा नहीं, बाल सफेद क्यों होने देता है? अच्छा, बाल सफेद तो रहने दो, बीमार क्यों पड़ता है बोलो? अभी तो हम तो जवान हैं फिर भी बीमार पड़ते हैं हा? किसी का सर दुखता है, किसी का पेट दुखता है, तो तू शरीर का करता है ना, शरीर का तू परिणमन करता है, तो फिर ऐसी उल्टी उल्टी बातें क्यों होती है? यही बात प्रूव करता है कि हम शरीर का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से टाइम में ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक कार ने तो ऐसा लिखा है कि इसके घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यानी ऐसा कुछ होना है और वो हो जाता है ये मानता है कि मैंने किया। तो वास्तव में दोनों ही अलग अलग द्रव्य हैं, लेकिन ये क्या मानता है कि मैं शरीर का कुछ कर सकता हूं। यहां देखो क्या लिखते हैं, ये जैसे जो शरीर है सो मैं हूं, इस दृष्टांत में शरीर पर है, वह जीव के साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही है, एक क्षेत्र में रहता है बस इतना ही, तथापि उसको अपना रूप माना, यानी मैं स्वयं हूं ऐसा माना, इसलिए उसने व्यवहार को निश्चय समझा। वह ऐसा भी मानता है कि जो मैं हूं सो शरीर है, इसलिए उनको निश्चय को व्यवहार माना है, उसने निश्चय को व्यवहार माना है। जो ऐसा मानता है कि परद्रव्यों का मैं कुछ कर सकता हूं और पर अपने को लाभ नुकसान कर सकता है, वह मिथ्या दृष्टि है, एकांती है। हम तो ऐसा जरा भी नहीं मानते कि पर हमारा कुछ करेगा या कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं पर का कर सकता हूं, और क्या कहता है भैया क्या करे, ये कर्म जो है ना वो बहुत तकलीफ करते हैं, वो त्रास देते हैं, तो क्या हो गया? और ऐसा भी बोलते हैं साहब हमने जैसा कर्म किया है वैसा तो अभी भोगना ही पड़े। ऐसा भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो ये क्या है, एकांती है, मिथ्या दृष्टि है बोल रहे। देखो भाई, बोलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जैसा बोल रहा है वैसा ही मानेगा वस्तु स्वरूप के विरुद्ध, तो उसको यहां मिथ्या दृष्टि कहे हैं। सम्यक दृष्टि के न, अभी तो मिथ्या दृष्टि की बात करी, अभी सम्यक दृष्टि के न, समस्त यानी सर्व सम्यक विद्या के मूल रूप अपने भगवान आत्मा के स्वभाव को प्राप्त होना, आत्म स्वभाव की भावना में जुटना और स्वद्रव्य में एकता के बल से आत्म स्वभाव में स्थिरता बढ़ाना, सो सम्यक अनेकांत दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव अपने एक रूप ध्रुव स्वभाव रूप आत्मा का आश्रय करता है, यह उसका निश्चय सुने है। और अचलित चैतन्य विलास रूप जो आत्मव्यवहार, आत्मव्यवहार का अर्थ क्या कथक किया है, शुद्ध पर्याय प्रकट होता है, सो उसका व्यवहार सुने है। यानी यह सम्यक दृष्टि के नय को सुने और मैंने निश्चय नय और व्यवहार नय, ये किस तरह से घटित किया, ये बात हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के परिशिष्ट में बनारसी दास जी की जो चिट्ठी है निमित्त उपादान में, उसने ये बहुत अच्छी बात बताई। यानी उसमें जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसको भी आध्यात्मिक व्यवहार कहा, यही बात यहां बता रहे। अचलित चैतन्य विलास रूप जो आत्म व्यवहार यानी शुद्ध पर्याय प्रकट होता है, सो उसका व्यवहार है वो, और वो सुने है। ये प्रवचन सार गाथा 94 की टीका से ये बात अपने को समझाई है, ये गुजराती में लिखा है। हाँ हाँ बोलो।
वो भी करता है, वो आश्रय को करता है, पर्याय करते हैं, तो उसको निश्चय सुनेगा।
देखो निश्चय नहीं कि भी चार वेद है, ख्याल में है ना, तो उसमें से एक वेद है इसलिए उसको निश्चय नहीं कहा। आपको मालूम है चार चार वेद निश्चय नहीं कि नहीं मालूम, आपने सिखाया है ना। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, चार में
शुद्ध निश्चय साक्षात निश्चय
है, अशुद्ध निश्चय ये परम शुद्ध निश्चय नहीं है। हाँ वो तो व्यवहार अशुद्ध शुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। हाँ पर्याय है ना, कौन ना बोलते हैं, लेकिन वो अपनी है इसलिए उसको निश्चय नहीं मिली है। आगे नीति का स्वरूप, ये नीति यानी अपनी व्यावहारिक नीति की बात नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य स्वक्षेत्र नहीं, मेरे में नहीं है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।
सम्यक दर्शन ते श्रद्धा गुण नो शुद्ध पर्याय छे, तेनो विषय आत्मा नो टिकाळी शुद्ध चैतन्य भाव छे। सम्यक ज्ञान ते ज्ञान गुण नो शुद्ध पर्याय छे, तेनो विषय आत्मा नो टिकाळी चैतन्य भाव तथा वर्तमान पर्याय बने छे। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ समय दर्शन का विषय और समय ज्ञान का विषय एक है क्या? अलग है, अलग है क्या? अलग
है
किसका विषय वो बताए, पर विषय क्या है? त्रिकाली गुरु किसका विषय है? श्रद्धा का। और ज्ञान का? तो इसमें डिफरेंस क्या क्या होगा, अलग क्यों बताया? श्रद्धा में मात्र त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भाव लिया और ज्ञान में त्रिकाली भाव भी लिया और वर्तमान पर्याय। तो समय दर्शन वाला कैसे समझेगा आनंद का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो ही नहीं हुआ, इन्हें वो हुआ ये ख्याल में आया,
इन्हें
ये ज्ञान की पर्याय ने जाना कि नहीं जाना, तो ज्ञान पर्याय को जानता है कि नहीं जानता, ये प्रश्न चल रहा है। क्या ज्ञान त्रिकाली को जान रहा है कि पर्याय को भी जान रहा है? क्योंकि ज्ञान तो स्वर्ण प्रकाशक सब है ना, तो ज्ञान तो सबको जान रहा है। और श्रद्धा, श्रद्धा मात्र मैं पना स्थापित करती किसमें? वो त्रिकाली जो ज्ञान ने जो शुद्ध नय का विषय बताया उसमें श्रद्धा ने यह मैं हूं मान लिया, ऐसा उसको दृष्टि का विषय। तो तेनो विषय आत्मानो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भाव श्रद्धा सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण का शुद्ध पर्याय उसकी। और उसका विषय आत्मानो त्रिकाली चैतन्य भाव तथा इन एडिशन वर्तमान पर्याय बनने चाहिए। और सम्यक चारित्र ते चारित्र गुण नो शुद्ध पर्याय छे, तेनु कार्य सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पोताना स्वरूप मां स्थिरता कर सम्यक चारित्र अने सिद्ध दशारूप कार्य ने उत्पन्न करूं ते छे। रत्नत्रय का विषय क्या है हरि का, उसकी बात हम बताए। तीनों का वो कार्य या पर्याय ऐसा लिया, वो है तो पर्याय तीनों, समय दर्शन भी पर्याय, समय ज्ञान भी पर्याय, समय चारित्र भी पर्याय। और उसका विषय क्या है उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। आगे नीति का स्वरूप,
यहाँ 24 नंबर का पॉइंट है, आपके यहाँ कितना? 26
26 हो गया।
हाँ ठीक है 26। हाँ प्रत्येक वस्तु, वस्तु का अर्थ जिसमें गुण और पर्याय वसते हैं इसको द्रव्य कहें। तो प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से है और परवस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वह वस्तु नहीं है। यानी मैं जीव द्रव्य हूं तो मैं मेरे स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से हूं, लेकिन परद्रव्य उसके अपेक्षा से मैं नहीं हूं। परद्रव्य में चारों ही बातों ले लेना। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है ऐसा जानना सो यथार्थ नीति है। ये नीति को क्या कहा, बाहर गांव में अपने जो सोशल लाइफ में जो नीतिमत्ता जो होती है उसकी बात नहीं है। यहां तो कह रहे हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना सो यथार्थ नीति है। जिन्हें
ज्ञान देना,
हाँ सर,
नीति यानी ज्ञान देना।
यहां तो एक्चुअली जानने के अलावा आप क्या करते हैं, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना वह नीति का कार्य है, ऐसा बता रहे। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकांत स्वरूप तथा प्रमाण और निश्चय व्यवहार रूप नई ही यथार्थ नीति है। अभी क्या बताया, ये जानने में ही बात आ गई ना, निश्चय नये और व्यवहार नये की बात। जो सत्पुरुष, सत्पुरुष यानी सम्यक दृष्टि पुरुष, अनेकांत के साथ सुसंगत, सुसंगत यानी समीचीन, समीचीन यानी सही यथार्थ दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त कर जानकर जिन नीति को अर्थात जिनेन्द्र जिनेश्वर देव के मार्ग को, न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। ज्ञान स्वरूप होते हैं यानी है तो ज्ञान स्वरूप ही, लेकिन मैं सिर्फ ज्ञायक हूं या ज्ञान स्वरूप हूं ऐसे पर्याय में परिणमित होते हैं। नोट, अनेकांत को समझने की रीति को स्यादवाद कहा है, क्योंकि स्यादवाद यानी स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कथन, तो किसी अपेक्षा से किसी वस्तु का जो कथन है तो वो क्या बताता है कि पर्टिकुलर अपेक्षा से द्रव्य ऐसा है, ख्याल में, तो उसमें अन्य भी धर्म है ये बात गर्भित होती है। इसलिए कह रहे हैं अनेकांत को समझने के रीति को स्यादवाद कहा है। मैंने क्या पढ़ा, अनेकांत को समझाने की रीति को स्यादवाद कहा है, समझाने की रीति को, बरोबर। सम्यक अनेकांत को प्रमाण कहा जाता है, यह संक्षिप्त कथन है। वास्तव में जो सम्यक अनेकांत का ज्ञान है सो प्रमाण है, उसी प्रकार सम्यक एकांत को न कहते हैं। वास्तव में जो सम्यक एकांत का ज्ञान है सो नये है। ये तो हमने पहले देखा था कि नये तो सम्यक शुद्ध ज्ञान के ही होते हैं, उसके एक अंश को ही नये कहते हैं। वही बात उन्होंने यहाँ पर समझाई। निश्चय और व्यवहार का दूसरा अर्थ अपना
परिग्रहण स्वरूप
है,
परिग्रहण स्वरूप मिथ्या एकांत दृष्टि ने वितराग भगवान परिग्रह कहे छे, अने ते सम्यक अनेकांत दृष्टि वडे दूर थई शके छे। इसको मिथ्या का परिग्रह कहा है, वही बात है। आगे निश्चय ने व्यवहार नो बीजो
क्या मान्य तो
एकांत कहो, एकांतवादी कहो, एक ही बात है।
अभी हो गया
निश्चय व्यवहार का विचार,
इतने में
इतना एक ही बात है।
इस प्रकार के परिग्रह में पहला परिग्रह
है
निश्चय व्यवहार का, दूसरा अर्थ अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अशुद्ध पर्याय बताने के लिए भी निश्चय प्रयुक्त होता है। क्या बता रहे हैं, निश्चय नैग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रव्य की बात हो। निश्चय में क्या हो सकता है, द्रव्य की भी बात हो सकती है और शुद्ध पर्याय या अशुद्ध पर्याय, लेकिन वो जैसा है वैसा बताने के लिए ये निश्चय भी प्रयुक्त यानी यूटिलाइज होता है, उसकी योजना कहीं की जाती है। जैसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा के समान है, आत्मा की सिद्ध पर्याय को निश्चय पर्याय कहते हैं और आत्मा में होने वाले विकारी भाव को निश्चय बंध कहा जाता है। स्वद्रव्य या पर्याय को जब निश्चय कहा जाता है तब आत्मा के साथ परद्रव्य का जो संबंध है उसे आत्मा का कहते हैं, यही व्यवहार है, उपचार कथन है। देखो क्या कह रहे हैं, यहां ये बता रहे हैं जब स्वद्रव्य की बात हो या स्वपर्याय की जब बात हो तो उसको निश्चय कहने कह सकते हैं, लेकिन उसी समय में आत्मा के साथ जो परद्रव्य का संबंध होता है यानी अब ये शरीर का संबंध है तो क्या कहते हैं, उस शरीर को आत्मा का कहते हैं, यानी ये मेरा शरीर है ऐसा कहना, तो कहते हैं ये भी व्यवहार है, ये भी उपचार से किया गया कथन है। जैसे हमने देखा है कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, यानी कैसे, जो निश्चय वितरकता है वह मोक्ष मार्ग है मान लो संवर निर्जरा, लेकिन उसके साथ में रहने वाला जो शुभ परिणाम भी है उसको भी मोक्ष मार्ग उपचार से कहने में आता है। वैसे यह आत्मा जो है या आत्मा की जो शुद्ध पर्याय है या आत्मा की जो अशुद्ध पर्याय है वो आत्मा की कहना, लेकिन उसके साथ साथ ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये कहना व्यवहार है। जैसे जड़ कर्म को आत्मा का कहना व्यवहार है, जड़ कर्म परद्रव्य की अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है, तथापि उन जड़ कर्मों को आत्मा का कहते हैं, यह कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए है, अतः व्यवहार न है, चार कथन है। इस अध्याय के 33वें सूत्र में दिए गए सात नये आत्मा तथा प्रत्येक वस्तु में लागू होते हैं, ये सात नये यानी कौन से होंगे आप जानते हैं, आप जानती हैं नहीं कि हमने कोई बात नहीं आगे किसी को यानी इतना ये सात नहीं का अभी अभ्यास कराएगा नहीं, अरे तुम तो सब नहीं 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 अच्छा ठीक है, वो तो प्रवचन सार के वक्त किया था। सात नए जो होते हैं वो क्या है, आत्मा में भी लागू है और अन्य द्रव्य में भी लागू होते हैं, इसलिए उन्हें आगम शास्त्रों में निश्चय नए के विभाग के रूप में माना जाता है। इन सात नयों में से पहले तीन द्रव्यार्थिक नए के विभाग हैं और बाद के चार पर्यार्थिक नए के विभाग हैं। वहां व्यवहार नए को भी द्रव्यार्थिक नए में लिया था, हम तो ऐसा नक्की कर देंगे निश्चय ने और व्यवहार ने, निश्चय ने कहीं कहीं निश्चय ने और द्रव्यार्थिक ने एक होता है पर हमेशा होगा ऐसा नहीं, और पर्यार्थिक ने और व्यवहार ने एक है ऐसा नहीं है, इसलिए तो यहां बताया जीव की शुद्ध अशुद्ध पर्याय को या द्रव्य के स्वभाव को यथार्थतया निरूपण करना हो निश्चय, लेकिन द्रव्यार्थिक ने में द्रव्य की बात आएगी और पर्यार्थिक ने में पर्याय की बात आएगी, इसलिए कहते हैं कि पहले तीन अभी आपने जो बताया ना, तो उसमें क्रम से क्यों याद करना, तो फिर ये तीन कौन से द्रव्यार्थिक ने गए, ये हमें गलत नहीं हो। ठीक है, अभी तो हमने ये पढ़ना पढ़ा नहीं है, दोबारा पढ़े। हाँ हाँ, अभी टाइम है। क्या कहा फिर से, इन सात नयों में से पहले तीन द्रव्यार्थिक नय के विभाग है और बाद के चार पर्यार्थिक नय के विभाग है। विभाग है ना, सब डिविजन, किंतु वे सात नए भेद है इसलिए, और उनके आश्रय से राग होता है और वे राग दूर करने योग्य है, इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में उन सबको व्यवहार नय के उपविभाग के रूप में माना जाता है। यानी किसी भी बात को जब अपेक्षा लगती है तो उसका डिवीजन अलग जगह हो जाता है। आत्मा का स्वरूप समझने के लिए नए विभाग, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से आत्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यहाँ त्रिकाल शुद्ध कहने में वर्तमान विकारी पर्याय गौण की गई है। देखो यहाँ क्या बात है, यहाँ जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की बात करते हैं, यानी जब हम कहते हैं कि आत्मा का अनुभव जब होता है तब वो त्रिकाली द्रव्य का अनुभव होता है, यानी उसमें कोई भेद नहीं, अभेद अखंड ऐसा जो कुछ आत्मा जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परा पूरा पूरा है वैसा उसका अनुभव होता है। तो लोगों का यही एक क्या बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट खड़ा करते हैं कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब उसमें पर्याय है क्या नहीं, हाँ दृष्टि के विषय में पर्याय है क्या नहीं, इनको सब मालूम है। पर यहाँ गुरुदेव ने क्या बताया, कह रहे हैं, यहाँ तो गुरुदेव ने नहीं बताया, रामजी भाई ने बताया, क्या कह रहे हैं, शुद्ध द्रव्य दिखने की दृष्टि से आत्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यहाँ त्रिकाल शुद्ध ने कहने में वर्तमान विकारी पर्याय गौण की गई है। अभी यहाँ तो विकारी पर्याय की बात ही नहीं ली है, यह विकारी पर्याय क्षणिक अवस्था होने से पर्यार्थिक नय का विषय है, और जब वह विकारी दशा आत्मा में होती ऐसा बतलाना हो तब वह विकारी पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय होती है। अभी ये नय का थोड़ा सा अभ्यास दोबारा होगा तो ये क्या कहते वो समझेंगे, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की भी बहुत भेद है। कितना जो है
दस,
हाँ ये दस भेद है उसके। अभी एक एक भेद को पढ़ते बैठेंगे तो उसमें अपना एक महीना जाएगा, और जब ऐसा बतलाना हो कि यह पर्याय परद्रव्य के संयोग से होती है तब वह विकारी पर्याय व्यवहार नय का विषय होती है। यहाँ यह समझना चाहिए कि यहाँ आत्मा की अपूर्ण पर्याय भी व्यवहार नय का व्यवहार का विषय है, वहां व्यवहार का अर्थ भेद होता है। यानी व्यवहार के दो भेद हैं, दो प्रकार से बताया ना, जो भेद करे वो व्यवहार, और दो द्रव्य का मिलकर जो कोई कार्य होता है ऐसा बताना वो व्यवहार। इसलिए यहाँ वो पहले वाली की बात करते हैं कि व्यवहार का अर्थ भेद होता है, यहाँ भेद करके बात खत्म की है ऐसा बताना चाहते हैं। निश्चय ने और द्रव्यार्थिक ने तथा व्यवहार ने और पर्यार्थिक ने भिन्न भिन्न अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है, वो एकार्थवाची भी कभी कभी यूटिलाइज किए जाते हैं। ऐसा ज्ञान करना कि रत्नत्रय जीव से अभिन्न है सो अभेद प्रधान द्रव्यार्थिक नय का स्वरूप है, ये भी एक द्रव्यार्थिक नय के भेद में से है। अभेद प्रधान, इसी प्रकार रत्नत्रय जीव से भिन्न है ऐसा ज्ञान करना सो भेद प्रधान पर्यार्थिक नय का स्वरूप है। ये इतना ही समझ लेना, अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर बहुत अभी इतना बोर हो गए तो वहां कितना होंगे। और ये ऊपर क्या लिखा है, नीचे हमारे यहाँ ये लिखा है प्रवचन सार गाथा 181 जैसे आचार्य की टीका। यह है क्या आपके यहाँ लिखा हुआ? नहीं, हिंदी में है केवल, गुजराती में नहीं लिखा हुआ। तमारा माँ छे भाई हिंदी में भी नहीं? रत्नत्रय में अभेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग है, तथा भेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो व्यवहार नहीं से मोक्ष मार्ग है। निश्चय रत्नत्रय के समर्थन करने का यह मतलब है कि जो भेद प्रवृत्ति है सो व्यवहार रत्नत्रय है, और जो अभेद प्रवृत्ति है सो निश्चय रत्नत्रय है। अभेद यानी जैसा स्वभाव है वैसे पर्याय में प्रकट होना, वो अभेद हो गया। और भेद यानी साथ में जो राग है, हाँ शुभ राग की बात है, वो भेद रूप व्यवहार है, भेद प्रवृत्ति रूप। छठे सूत्र का सिद्धांत, हे जीव पहले यह निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नहीं। ये अपने को पूछ रहे हैं, यदि धर्म करना हो तो पर के आश्रय से मेरा धर्म नहीं है, ऐसी श्रद्धा के द्वारा पराश्रित अभिप्राय को दूर कर। ये बात नक्की करने के लिए ही हम पूरा आगम पढ़ते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसा सिर्फ बोलने से कोई माने नहीं तो फिर उसको द्रव्य गुण पर्याय सामान्य गुण विशेष गुण निमित्त नैमित्तिक संबंध ये आदि बातें क्यों सिखाई जा रही है, या सीखते हैं हम कि यहाँ यही बात बताना चाहते हैं कि तू ऐसा मानता है कि पर से मेरा धर्म होगा तो वैसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बात समझने के लिए और समझाने के लिए ये सारा जिनागम लिखा है, क्योंकि हम तो ऐसा ही मानते हैं कि भगवान की मेहरबानी हो तो हमें आप बोलते सम्यक दर्शन होगा, तो हमने तो ऐसा सुना है भगवान की मेहरबानी हो तो हमको लड़का होगा। देखिए गड़बड़ी हो गई थी, अभी क्या बताऊं मैं आपको। सोनगिर नाम का एक गांव है, उधर मैं हो सकता है कि 25 साल पहले गया था कभी, मुझे याद नहीं कभी गया था। तो जिस दिन मैं वहां गया तो मेरे साथ एक भाई थे, बोले मैं आपके साथ घूमना आऊंगा। मैंने कहा चलो अच्छा है, और घूमने गए तो इतने में बारिश है, तो उसको आदत थी कुछ भी होगा तो सामने वाले को पूरा क्रेडिट देने का। तो देखो साहब पंडित जी आप पधारे, आपके चरण स्पर्श से तो यहाँ बारिश आ गई ऐसा ऐसा, तो फिर हम आपकी दया से बारिश आई ऐसा भी बोला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर बात चलती चलती चली तो मैंने कहा आप क्या काम करते हो, बोले आपकी दया से फला फला बिजनेस है। फिर मैंने पूछा आपको कितने बेटे हैं, तो फिर आप बाकी तो बात समझ गए होंगे। ऐसी रीत है, ये सब व्यवहार है व्यवहार। यहाँ तो कह रहे हैं कि हमें वस्तु स्वरूप समझना है, पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा, हे जीव तू पहला निश्चित कर क्या कर कि तुझे धर्म करना है या खाली टाइम पास करना है, ऐसा पूछा। हम विगरसली हमें इसी भाव में सम्यक तो प्राप्त करना है मिनिमम हो, और उसके लिए हम कितना टाइम देते हैं, कितना उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, ये अपन अपने को पूछना चाहिए। यहां कह रहे पहले निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नहीं, और यदि धर्म करना हो तो फिर आगे की बात क्या बता रहे हैं, तो पर के आश्रय से मेरा धर्म नहीं है। तो पर के आश्रय में किसको लेना, बोलो मिली भाई। बहुत अच्छा, देवशास्त्र गुरु भी मुझे धर्म नहीं दे कर दे, तो कल से स्वाध्याय बंद कर देना। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे ये बताना है कि ये पढ़कर ये सुनकर जो शास्त्र है उसे पढ़कर हम ऐसा टाइम निकाले कि अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करें, ऐसा वक्त निकाले कि मैं अपने स्वभाव में कैसा गुप्त हो जाऊं, कैसे उसका अनुभव करूं, ये हमें नक्की करना है। तो ये कब होगा कि पर के आश्रय से मेरा धर्म नहीं है, ऐसी श्रद्धा के द्वारा क्या कहते हैं पराश्रित अभिप्राय को दूर कर। ये जो हमारा दिन रात यही प्रयत्न चल रहा है कि पर के कारण मेरा कार्य होगा या और तो और क्या है, मेरे कारण पर का कार्य होगा, तो कहते ये अभिप्राय ही गलत है। पर से जो जो अपने में होना माना है उस मान्यता को यथार्थ प्रतीति के द्वारा जला दे। गुजराती में हूं लखीसिंह ना, कितना स्ट्रांग स्टेटमेंट है। यानी ये तो अपने भलाई के लिए ही बात है। कहते हैं कि तेरा जो अभिप्राय है कि हमने ऐसा माना कि देखो साहब ये जो कुछ है ना, ये हमारे अभी ये सारा जो पैसा है वो हमारे पिताजी की मेहरबानी से, ये मेरे माँ का आशीर्वाद है, ये ऐसा लिखते हाँ जहां तहां यही बात चलती है, ख्याल में है ना। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं कि तू पर का आश्रय कर रहा है और पर के द्वारा ही तेरा लाभ हो रहा है ऐसा तू मान रहा है, तो ये मान्यता ही तेरी यथार्थ नहीं है। क्योंकि यहां मूल में क्या बात है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इसका पहला निश्चय होना चाहिए। या ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार सात यानी पुण्य पाप सहित नौ तत्वों को जानकर उनमें से शुद्धन के विषय रूप जीव ही का आश्रय करना उतारते है ना, क्या आप क्या कहें जीव नो मतलब ना नहीं है इसमें, जीव का ही आश्रय करना बराबर ठीक है। तत्वों को जानकर यानी साथ ही तत्वों को जानकर उनमें से किसका है जीव का ही आश्रय करना। हमने देखा ना कि उपाधि यानी आश्रय करने योग्य ये कौन कौन से तत्व हैं, दिव्याबेन उपाधेय तत्व कौन कौन से हैं, हाँ तो उसमें डिफरेंस क्या है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है हाँ, लेकिन उसमें डिफरेंस भी कुछ होगा कि नहीं, नहीं तो कोई जीव का लेगा, कोई संवर का लेगा, कोई निजरा का लेगा, कोई मोक्ष का लेगा, तो उसका काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा तो डिफरेंस आपको मालूम है, प्रेरणा बिन जब से उत्तर देने के लिए रेडी है हाँ? आप देना चाहती हैं आश्रय करने योग्य होगा कैसा वो उपाधि, तो हमने पहले माना है एक देश प्रकट करने योग्य है और मोक्ष पूर्ण देश प्रकट करने योग्य है। ये कब होगा कि जब आत्मा आश्रय करने योग्य मानकर हम आत्मा में लीनता करेंगे या आत्मा में स्थिरता करेंगे तो ये संवर निर्जरा सामने खड़े हो जाएंगे, ख्याल में तो प्रकट करने योग्य, तो उसी को प्रकट करते रहो तो क्या होगा, तो कहते और अंतरंग में स्थिर हो जाओ तो पूर्ण देश प्रकट होगा। यानी जैसा स्वभाव है वैसा मोक्ष पर्याय में प्रकट है, ये बात होती। तो इसलिए क्या कहा देखो यहां ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार सात तत्वों को जानकर उनमें से शुद्धने के विषय रूप जीव का ही आश्रय करना भूतार्थ है, उसी प्रकार अधिगम के उपाय, अधिगम यानी ज्ञान के उपाय जो प्रमाण नए निक्षेपों को जानकर उनमें से शुद्धने के विषय रूप जीव का ही आश्रय करना भूतार्थ है, और यही सम्यक दर्शन है। अब आगे पढ़ेंगे। हाँ, भूतार्थ यानी सत्यार्थ, भूत यानी हुआपणु, ये भूत, वो भूत पिशाच वाला भूत की बात नहीं, ये ऐसी बात होती है कि एक ही शब्द क्या नहीं होते, जिसको हम परमार्थ भी कह सकते हैं, सत्यार्थ परमार्थ वगैरह। यहां जो अर्थ है ना, उनमें से शुद्धने के विषय रूप जीव का ही आश्रय करना भूतार्थ है, यानी वही अल्टीमेटम है, उससे अलग कुछ करना नहीं, उसी का हमको आश्रय करना है, और इसी के लिए कह रहे हैं सम्यक दर्शन। अब निश्चय सम्यक दर्शन आदि जानने के अमुख्य, पहले कैसे थे मुख्य, ये कैसे हैं अमुख्य यानी अप्रधान यानी गौण, ये उपाय है। बोलो जी।
निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण सिद्धि विधानतः,
ये निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण
स्थिति।
हाँ नहीं, आप कुछ बोलना चाहते थे इसलिए मैं रुका। हाँ, साधन अधिकरण स्थिति विधानतः, यानी क्या बताना चाहते हैं, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से भी सम्यक दर्शन आदि तथा जीवाधिक तत्वों का अधिगम यानी ज्ञान होता है। अभी निर्देश का अर्थ क्या है, स्वामित्व का क्या अर्थ है, वो बहुत शॉर्ट में यहाँ बताया, उसको भी हम देखते हैं। अब कहते हैं निर्देश, देखो ये जो सारी बातें होती है ना, यहाँ तो 6 बातें बताई है, ये बातों से किसी भी वस्तु का हम सही रूप से यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। लेकिन पहले जो बातें बताई थी वो तो मुख्य रूप से थी, कौन सी, प्रमाण नए निक्षेप आदि जो हमने देखे, और ये कैसे हैं, है इम्पोर्टेंट पर अमुख्य है, ये होते हैं और इसका भी अभ्यास करने से और अपना ज्ञान निर्मल हो सकता है। कहते हैं निर्देश का अर्थ क्या है, वस्तु स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं, यानी ये कैसा निर्देश है, यानी कैसा कथन है, तो जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ कथन करता हो।
पहले का संदेश जो है ना गुजराती भाषा है, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकार स्थिति और विधान, जेना की सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि तत्वों नो व्यवहार थाय छे, तत्वों नो व्यवहार थाय छे,
इसको समझाया जा सके,
ज्ञान कराया जा
सके, उसका विस्तार से वर्णन किया जाए, उपदेश दिया जाता है, कुछ भी समझा जाता है, कुछ भी करना यानी कोई भी विषय समझना है तो पहले तो बताए प्रमाण और नए से समझो, अब उसमें इतनी सारी बातें जानो, उसका निर्देशन है, उसका कथन होगा, उसका स्वामी कौन है, यानी जिसे समय दर्शन बात बताए तो समय दर्शन का स्वामी कौन हो सकता है वो बताना है, या शायद समित्व की बात करें स्पेसिफिकली तो उसके स्वामी कौन से गति के कौन से गुणस्थान वाले, वो स्वामित्व में आते हैं, ऐसे हर एक में साधन यानी उसको वो कैसे हुआ, उसके उपजने का क्या कारण था, वो साधन में आ जाएगा।
देखो ये
हाँ
सर, देखो अभी आपने जो पूछा ना मिली भाई, ये व्यवहार है, ऐसा लिखा ना, क्या लिखा है,
व्यवहार
तथा
जीवादिक तत्वों व्यवहार था,
व्यवहार था यानी वो भेद से कथन किया जा रहा है ना, इसलिए उसको व्यवहार था, अभी वो कौन कौन सी बातें हैं, तो निर्देश है, स्वामित्व है, साधन है, अधिकरण स्थिति और विधान, अभी अपन थोड़ा सा अलग स्टाइल से सीखने की कोशिश करें। ये 6 बातें यहाँ पर बताई है, हाँ, और ये 6 बातें अभी 3 मिनट में याद करनी है हमको, तो मैं पढ़ूंगा और आपको रिपीट करना है, कोई भी मर्मरिंग नहीं करे, बिल्कुल खुले आवाज से बोले, निर्देश,
निर्देश।
फिर से सब सामूहिक रीति से अच्छी तरह से बोले, मुझे तुम्हारा ही आवाज मिला, बाकी किसका नहीं। निर्देश,
निर्देश।
स्वामित्व,
स्वामित्व।
साधन,
साधन।
कितने पढ़े हमने?
तीन।
तीसरा नंबर कौन सा? नीचे नहीं देखना भैया, अभी याद करना है कि खाली अभी टाइम पास करना है। दूसरा स्वामित्व, स्वामित्व यानी ओनरशिप। और पहला बेन तीन बताएंगे आप? निर्देश, स्वामित्व, दूसरा कौन सा? पहला, तीसरा, तीनों हो गया तीन। 50% तो जीत गए हम एक मिनट के अंदर। हाँ, क्या क्या देखा? निर्देश, स्वामित्व और साधन। अभी उसका अर्थ तो हमें मालूम नहीं है, अर्थ भी हम देखेंगे, उसमें क्या तकलीफ है। पहले जिसका अर्थ समझना है उसको पहले याद तो करो कि अपन किसको समझ रहे हैं। अब क्या कहते हैं? अधिकरण, बोलो।
अधिकरण,
स्थिति, विधान। क्या क्या बताया? फिर से मैं बोलता हूँ, आप मत बोलना। अधिकरण, स्थिति और विधान, ये चार पांच और छठा नंबर आया है इनको। स्थित नहीं, स्थिति चाहिए, क्योंकि भाई सूत्र में स्थिति है।
वो उसकी पहली वो रह गई है।
हाँ, क्या क्या पढ़ा हमने? देखो अधिकरण, बोलो। स्थिति, विधान। अभी चौथा नंबर कौन सा पढ़ा बेन? और तीसरा साधन। कोई बात नहीं, हम तो दो मिनट में भूलने के अधीन हो गए ना, इसलिए ये मैं चाहता हूं कि हम इसको देखेंगे जरूर और समझेंगे। और ये समझने के लिए हमें कम से कम याद तो करने में क्या तकलीफ है। पहले तीन बताएंगे नितिन भाई बिना देखे? निर्देश, स्वामित्व, साधन। अगले तीन आप ही बोलेंगे।
अधिकरण,
स्थिति, विधान। आप बताएंगे भाई साहब? छठ छठ ठीक है, छह नाम। स्थिति, निर्देश, स्वामित्व, साधन,
अधिकरण,
बहुत अच्छा। हाँ, विधान आ गए ना छह। मंदा तुझे आ गया? बोलो। विधान, बहुत अच्छा। अभी मुझको ऐसा कोई वीर चाहिए जो उल्टे क्रमांक से बोलेगा। तुम बोलोगे? बोलो।
विधान, निर्देश, अधिकरण, विधान, स्थिति, अधिकरण।
हाँ, साधन,
स्वामित्व, निर्देश।
हाँ, अभी पहला, तीसरा, पांचवा। साधन और स्थिति, कोई बात नहीं। मैं तो बड़ा वो हूँ, मैं खुद भी याद करता हूँ और आपसे भी याद कराता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। अभी पहला, तीसरा और चौथा बोलेंगे बहन, क्योंकि आपको मालूम था दो, चार और छह बोलने वाला है। बहुत अच्छा, पूरा तो सबको आता है, पूरा तो सबको आता है, उल्टा पुल्टा करेंगे तो गड़बड़ होते हैं। निर्देश, चौथा नहीं, तीसरा चौथा पूछ रहा था। अच्छा चलो, चौथा पांचवा बोलो। निर्देश, हाँ, स्थिति। मैं बोला ना ऐसा सब एक्सपेक्ट करते हैं करके। देखो बहन, मैं फिर से बोलता हूँ, सुनना। पहला, तीसरा और चौथा बताना है आपको। साधन, हाँ, कौन सा? हाँ, अधिकरण, बहुत अच्छा। अभी आप चार छह छह बोलेंगे भाई साहब? बहुत अच्छा, देखो बच्चा जानने लगा है। आप उल्टे पांच, चार और दो। नहीं, ऐसा नहीं, सबको बोलना चाहिए। दूसरा,
चौथा,
नहीं,
स्वामित्व, दूसरा,
बरोबर है, नहीं, जो सबको याद है वो निर्देश। ये क्या है, ये किसके नाम है भैया, अभी हम याद कर रहे हैं पूरी भूल गए। सम्यक दर्शन के नहीं,
कोई भी विषय पढ़ना है समझना है उसके उपाय।
हाँ, यानी ज्ञान करना है ना हमको,
तो फिर है।
सुनना सुनना, ये सम्यक दर्शन आदि, इसमें सात तत्व भी आ सकते हैं, द्रव्य भी आ सकता है, गुण भी आ सकता है,
यानी ये जानने के उपाय।
हाँ,
किसी विषय को जानना है तो इन छह अपेक्षाओं से उसको जानना पड़ेगा।
चलो कोई बात नहीं, ये बाकी हम कल दोबारा देखेंगे, और कल तो किसी को पूछना नहीं पड़े, सभी लोग बराबर याद करके आएंगे। हाँ, कल आएंगे तो की बात है। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सोवा।